श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य है, और जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी। यह उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है, और अभी हम ये चतुर्थ पुस्तक जो क्षेत्रानुगम, उसमें पृष्ठ संख्या 13 पर आ गए। यहाँ अधोलोक का जो विस्तार है उसकी बात हम देख रहे हैं। शंकाकार का पूछना था कि ये लोग जो मृदुंगाकार है, तो मृदुंगाकार तो पूर्व पश्चिम जो फ्रंट व्यू है उसकी अपेक्षा से बताया था, तो उसे ऐसा लगता है कि गोल ही है, नीचे सात राज्यों वाला गोल है, वर्त मंडलाकार सर्कल, बीच में एक राजू व्यास वाला सर्कल, फिर ब्रह्मलोक में पांच राजू व्यास वाला सर्कल, और ऊपर एक राजू व्यास वाला सर्कल, ऐसी उसकी कल्पना है। इसलिए वो कहता है ये मृदुंगाकार है, तो वो तो 343 गणराजू ये बन नहीं सकता है, तो उसकी अपेक्षा से ये मृदुंगाकार उसके कल्पना के अनुसार जो उसने मान रखा है उसका यहाँ क्षेत्रफल घनफल निकाल के दिखा रहे। उसमें से पहले में पहले अधोलोक का घनफल निकाल रहे, तो अधोलोक के घनफल में नीचे जो नीचे सात राजू का वर्तुल ऐसा गोल, और यहाँ एक राजू का, ये ऐसा है ना वेत्रासन जैसा, तो ये बीच वाला जो एक राजू सर्कल वाला जो ट्यूब जैसे है खंबे जैसा, उसका क्षेत्रफल निकाल के उसको अलग निकाला था, उसका घनफल निकाल के, ये जो वर्तुलाकार है यहाँ उसका निकाला था, और उसको हाइट सात राजू से गुणा करेंगे तो बीच वाली जो ये जो पट्टी है ना वृत्त, इसका हमें घनफल मिल गया। अभी बाजू का जो रिमेनिंग क्षेत्र है उसका घनफल निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, ये निकालने के बाद जो बचा है उसको बीच में एक बाजू से काटा और फिर उसको फैलाया। जैसे ये ऊपर एक राजू और नीचे सात राजू, बीच से ये इसके निकाल के रख दिया अलग, क्योंकि उसका निकाला था घनफल। अभी एक बाजू से यहाँ छेद देंगे और इसको ऐसा फैलाएंगे तो सुरूपाकार होगा, कल हमने देखा था, इसको ऐसा फैलाएंगे तो इस शेप का हो जाएगा सुरूपाकार। ये नीचे से गोल था उसको फैला दिया है, परंतु इसकी विर्थ यहाँ तीन राजू है, नीचे तीन राजू और ऊपर एक प्रदेश, ऐसा यहाँ थ्री डायमेंशनल इसको समझ लेना। अब उसमें से भी वो दो विभाग करते हैं, बीच में से जो ये जो सर्कल है ना वो ऊपर का एक राजू वाला सर्कल, एक राजू वाले व्यास की परिघी, उसको फैला दिया, तो एक राजू व्यास से युक्त जो परिघी है उसका जो डायमेंशन है, उसकी जो विड्थ है, उसी साइज का यहाँ उन्होंने रेक्टेंगल आयताकृति अलग निकाली, उसके भी नीचे से विड्थ यहाँ तीन राजू है और ऐसा फैला हुआ है, तो उसके तीन बाजू जो है ऐसा हाइट उसकी सात राजू, विड्थ ये जो परिघी एक राजू व्यास वाले की परिघी, वो जो 371 बाय 113 निकाली थी उन्होंने, और मल्टीप्लाइड बाय नीचे तीन राज्य है और ऊपर एक प्रदेश है, तो इनका एवरेज निकालना चाहिए, इसलिए 1.5 राज्य। तो इन तीनों की जो गुणाकार होगा मल्टीप्लिकेशन, वो ये बीच वाले पट्टी का घनफल हो गया, उनको मिल गया, ये निकाली। अब ये जो ट्रायंगुलर है साइड में, जो ट्रायंगल दो बचे हैं, इसमें भी नीचे तीन राज्यों के ऐसे है, हाँ, और ऊपर एक प्रदेश ही है। और ये जो ट्रायंगुलर है तो उसमें से अभी वो आगे आगे छेद बता रहे हैं, उसकी बात अभी हम पढ़ेंगे इसमें से। देखो अभी यहाँ लिखा है ना, विशेषार्थ से फिर हम पढ़ेंगे 13 पृष्ठ पर। यहाँ पर शंकाकार मृदंगाकार लोक को दृष्टि में रखकर यह कथन कर रहा है, शंकाकार की बात है। उसका भाव यह है कि इतने ही आचार्य अधोलोक का आकार चारों ओर से गोल ऐसे वेत्रासन के समान मानते हैं, जो नीचे गोल आकार वाला तथा 7 राजू चौड़ा है, और ऊपर क्रमशः घटता हुआ मध्यलोक में गोल आकार वाला तथा 1 राजू चौड़ा है। इसके ठीक मध्य में ऊपर से नीचे तक स्थित 7 राजू लंबी और 1 राजू चौड़ी गोल आकार वाली त्रस नाली है, जो अभी हमने देखी ना बीच में सेंटर में, उसको यदि वेत्रासनाकार अधोलोक के बीच में से निकाल कर, यानी उसको पहले हम घनफल निकालेंगे, उसको अलग रखेंगे, उसको निकाल कर बचे हुए अधोलोक को एक ओर से ऊपर से नीचे तक काट कर पसार दिया जाए, तो उसका आकार ठीक सूपा के समान हो जाता है। वो अभी हम कागज पर फैल के हमने देखा था। इस सूपाकार क्षेत्र के मुख का विस्तार, मुख यानी ये अभी ये जो सूपाकार अभी हमने देखा था ना ऊपर वाला, मुख का विस्तार ये कितना है, 1 राजू व्यास की जो परिघ है उतना है, जो 371/113 उन्होंने निकाल कर दिखाया था। तो मुख का विस्तार 371/113 इतना है, और तल का विस्तार जो 22.15/113 लिखा है वो 7 राजू व्यास वाले की परिघ है, उसका परिघ है। क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो हमने नीचे देखा था वो 7 राजू वाला था, 7 राजू व्यास है, तो 7 राजू व्यास है तो ये परिघ कितना होगा, उसका माप उन्होंने यहाँ बताया है 22.15/113। इसे मुख विस्तार से, अर्थात मुख विस्तार से ये परिघ है, व्यास तो 7 राजू है, 7 राजू व्यास के होते हुए इसी को हमने फैलाया तो परिघ कितना आया, उसको निकाला, बराबर ना। इसे मुख विस्तार से, अर्थात मुख विस्तार के अंत से लगाकर दोनों ओर 7 राजू लंबा नीचे की ओर, वो कर करेक्शन किया था ना, और का ओर किया, पहले और का ओर किया था, नीचे की ओर छेदने पर 2 त्रिकोण क्षेत्र और 1 आयत चतुरेस्त्र क्षेत्र, इस प्रकार 3 क्षेत्र हो जाते हैं। ये 3 क्षेत्र हमने किए, सेंटर वाला आयत चतुरस्त्र यानी रेक्टेंगल ऐसा हो गया ना लंबा, और ये दोनों बाजू 2 त्रिकोण हो गए, 3 क्षेत्र हो जाते हैं। अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, कल यहाँ तक पढ़ा था। उक्त प्रकार से बने हुए इन 3 क्षेत्रों में से पहले आयत चतुरस्र आकार वाले मध्यवर्ती क्षेत्र का घनफल निकालते हैं। अभी इसके 3 बाजू कौन से, एक तो ये जो 1 राजू वाला व्यास वाली जो परिघि है 371/113, हाइट 7 राजू है, और ये नीचे कितना है, ये नहीं लेना ऐसा वाला विड़, 3 राजू है और ऊपर एक प्रदेश है, इसलिए एवरेज निकालना पड़ेगा, इसलिए 1.5 राजू लेना, 2 जगह की मिला देना, 3 राजू में एक प्रदेश है निग्लिजिबल, और उसका आधा किया हमने तो 1.5 राजू आ गए। इन तीनों का गुणाकार करेंगे तो इस आयत चतुरस्र क्षेत्र का उच्छेद यानी ऊंचाई 7 राजू है, और विषकम्भ यानी चौड़ाई उसकी विड्थ 371/113 इतने राजू है। मुख में 1 प्रदेश प्रमाण बाहुल्य है, हमने देखा ना ऊपर तो 1 प्रदेश है और नीचे ऐसा फैला है उसको, और नीचे 3 राजू प्रमाण बाहुल्य है, इसलिए उच्छेद का प्रमाण जो सात राजू है उससे मुख के प्रमाण को गुणा करके तलभाग का बाहल्य जो तीन राजू है उसके आधे से अर्थात डेढ़ राजू से गुणा करने पर, आधा क्यों किया, एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि जो विड्थ है वो सब जगह समान नहीं है, नीचे तीन राजू है तो ऊपर एक प्रदेश है, इसलिए उसका एवरेज 1.5 निकला, अर्थात डेढ़ राजू से गुणा करने पर मध्यम क्षेत्र का अर्थात आयत चतुरस्र क्षेत्र का घनफल 371/113 × 7 × 3/3 वो 34.107/226 आया, इतना होता है। बीच वाला ये रेक्टेंगल है उसका आया। अब शेष जो दो त्रिकोण क्षेत्र है वे सात राजू लंबे हैं, ये ना सात राजू लंबा है और 113 से एक राजू को खंडित करके उनमें से 48 खंड अधिक 9 राजू भुजा वाले हैं, अर्थात अधो विस्तार 9.48/113 है। हम निकाल के देखेंगे ना, देखो हमने क्या देखा था, वो 42 पृष्ठ पर वो निकाला था ना, सात राजू के परिघ निकाली की, देखो जरा 42 पेज पर हमने कल देखा था इसको। एक राजू तो उन्होंने 371/113 वो निकाल के दिखाई थी, सूक्ष्म परिघ निकालने का तरीका भी बताया था। फिर सात राजू जिसका व्यास है डायमीटर, उसकी परिघ कितनी है वो निकाल के देखी थी, तो उसका 2501/113 आया। अभी हम यहाँ लिख के रखेंगे 2501/113, ये नीचे वाली वो सुरपाकार जो नीचे है उसकी परिघि इतनी है, बराबर, और हमने उसमें से इतना क्षेत्र निकाला अलग, क्योंकि इसका घनफल हमने निकाला था, यानी ये जो है ना इतना कितना 371/113 टोटल में से उतना माइनस करेंगे और फिर रिमेनिंग का दो भाग करेंगे, तो यहाँ का और यहाँ का विस्तार अलग अलग हमारे ख्याल में आएगा। त्रिकोण में ये बाजू तो सात राजू है और अभी ये एक भुजा ये बता रहे हैं कितनी है वो, तो उसको निकालने का तरीका ये 2501/113 जो सात राजू वाली परिघि है, बराबर, माइनस बीच में का जो हमने रेक्टेंगल का निकाला था, यानी जो मुख का जो एक राजू वाला जो परिघि है, तो वो कितनी 371/113 वो कितनी आ जाएगी, देखो ये 2501 ही है ना, 2501/113 और 371/113 121/113। अभी इसके दो विभाग करने, इधर एक विभाग है इधर एक है, उसके हाफ करेंगे ना, तो हमको अपना ये जो ट्रायंगल का तीसरा भाग मिलेगा, यहाँ नीचे का ये वाला भाग मिलेगा, क्योंकि इधर थोड़ा है इधर आधा है, आधा इधर है आधा इधर है, तो इसको अगर हम दो से डिवाइड करेंगे, हाँ 226 आएगी नीचे, हाँ ये दो से डिवाइड करेंगे वही तो, हाँ 1065। अभी इसके पूर्णांक करो तो यही आने वाला है, अभी यहाँ लिखा ना उन्होंने चार पूर्णांक, दो से डिवाइड किया, देखो इस क्या क्या हुआ, अच्छा ये मराठी है, हिंदी समझो, ये कैसा निकालना वो ख्याल में लेना, यानी उसको अगर हम पूर्णांक करते हैं तो 9 पूर्णांक, ये जो है ना पहले वाला 2501/113 ये कितना थे 9 पूर्णांक, 48:113 और इसका आधा करेंगे तो आधा किया हुआ है। सॉरी, ये आधा किया हुआ है बराबर। हाँ, 48:113 आधा किया हुआ ये है। इंदुवेन इतना ही लेना है कि हमने बीच का ये जो रेक्टेंगल उसको निकाला है। अब रिमेनिंग जो है नीचे वाली जो परिघी हमने 7 राजू की पूरी निकाली थी 22 पूर्णांक समथिंग, उसमें से बीच वाला वो 371/113 गया था। जो रहा उसके दो भाग के, एक ट्रायंगल यहाँ है एक ट्रायंगल यहाँ है, तो इसका कितना है तो 9 पूर्णांक 48/113 बराबर। यहाँ तक समझे ना? हाँ, भाग। इसी विस्तार को यहाँ त्रिकोण क्षेत्र की अपेक्षा भुजा कहा है। त्रिकोण की ट्रायंगल की 3 बाजू होते हैं तो एक को कोटि कहा तो दूसरे को भुजा कहेंगे और जो रिमेनिंग है उसको कर्ण कहेंगे। तथा उन दोनों त्रिकोण क्षेत्रों का भुजा और कोटि के यथा योग्य संभवित कर्ण का प्रमाण है। जो कुछ होगा वो कर्ण का प्रमाण है। ये कोटि, ये भुजा और ये कर्ण। अब ये 7 राजू है ना, एक को कोटि कहा तो दूसरे को भुजा कहेंगे हम। ट्रायंगल के तो जो दो भाग है उसको एक को कोटि एक को भुजा। हाइट और विड्थ ऐसा, हाइट और विड्थ। हाँ, और फिर ये उसका कर्ण हुआ। रिमेनिंग तीसरी बाजू, रेक्टेंगल है तो हम इसको कोटि भुजा कहेंगे। ये अपनी भाषा इतनी संपन्न है कि हर एक को अलग अलग नाम देते हैं। नहीं समझा आप? अंग्रेजी में तो अंकल और आंटी से काम चल जाता है। हाँ। तो हमारे यहाँ मामी को अलग कहेंगे, फूफी को अलग कहेंगे, मौसी को अलग कहेंगे, वो तो सबको आंटी कहेंगे। वैसे यहाँ हर एक को अलग अलग नाम देंगे क्यों? अभी तो समझो इसको। हाँ, ये 7 राजू और ये 9 पूर्णांक 48/113 और कर्ण की जो यथा योग्य जो होगी वो उसको भी बताएंगे कैसे निकालते। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग और फिर उसका स्क्वायर रूट करना, उसका वर्गमूल निकाल। इस 7 राजू का वर्ग प्लस ये 9 पूर्णांक उसका वर्ग, दोनों को मिलाओ फिर उसका वर्गमूल निकालो तो ये कर्ण का प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब कहते इन दोनों त्रिकोण क्षेत्रों को कर्ण भूमि से लेकर दोनों ही दिशाओं में बीच में से काटने पर 3-3 क्षेत्र हो जाते हैं। इसके फिर 3-3 क्षेत्र करना है बीच में काटने पर, इसके भी और इसके भी। अब इसकी फिगर यहाँ दिखाई है, स्टार्टिंग में ही दिखाई है। वो 13-14 वाला जो आकृति नंबर 8 है ना, उसमें उन्होंने बताया है। उसके 1, 2, 3 और यहाँ 4, 5, 6, 7 ऐसे दोनों बाजू के 3-3 क्षेत्र कर दिए उन्होंने। बीच वाला वो रेक्टेंगल जैसा क्षेत्र था। अभी उसके ऐसे 3-3 क्षेत्र करते वो। अब उसी का विशेषार्थ फिर बता रहे हैं। यहाँ पर त्रिकोण क्षेत्र भुजा क्षेत्र के भुजा और कोटि का प्रमाण तो दिया है पर कर्ण का प्रमाण नहीं दिया है। उसके निकालने की प्रक्रिया यह है कि भुजा के प्रमाण का वर्ग, वो वर्ग बराबर लिखो मंदा बहन, वो जरा पेन दे इधर है ऊपर। वो ग के ऊपर बिंदी जैसा हुआ है उसको वर्ग करो। वर्ग और कोटि के प्रमाण का वर्ग जितना हो उन्हें जोड़कर उसका वर्गमूल निकालना चाहिए। जो वर्गमूल का प्रमाण आवे वही कर्ण रेखा का प्रमाण समझना चाहिए। इन्होंने उसका प्रमाण नहीं दिया है, जो कुछ यथायोग्य है इतना ही बताकर छोड़ दिया। उक्त प्रकार से उत्पन्न हुए इन तीन तीन क्षेत्रों में एक एक आयत चतुरस्र क्षेत्र और दो दो त्रिकोण क्षेत्र जानना चाहिए, उसके फिर तीन भाग किए, जैसे पहले सुपा के तीन भाग किए थे, अब यहाँ पर भी तीन भाग करेंगे। उनमें सात राजू उच्छेद वाले आयत चतुरस्र क्षेत्र के दाएं बाएं दोनों ओर, अब ये आयत चतुरस्र वो पहले वाला, इसके दोनों ओर और एक एक वो क्षेत्र आयत चतुरस्र क्षेत्र निकाला, दोनों ओर जो दो आयत चतुरस्र क्षेत्र है उनमें प्रत्येक का 3.5 राजू उच्छेद है, तथा 226 से एक राजू को खंडित करके उनमें 161 खंडों से अधिक 4 राजू अर्थात 4 पूर्णांक 161/226 प्रमाण विषकंभ है, उसकी विड्थ और उसकी हाइट बता दी। ये 7 राजू वाला का आधा किया और इसका भी आधा कर देंगे, वो 9 पूर्णांक जो था ना, हाँ तो उसको हमने कितना देखा था, 1035 हाँ डिवाइडेड बाय 113 था, उसका भी आधा करो तो नीचे 226 आ जाएंगे और ऊपर 1065, उसको पूर्णांक करेंगे तो 4 पूर्णांक 161/226 आते हैं। आये चतुरस्र का ये फिर घनफल उन्होंने निकाला, और ये विषकंभ दोनों भुजा और कोटि और विषकंभ वो बता दिया उन्होंने, हाइट और विड्थ तथा विषकंभ तथा दक्षिण और वाम यानी दाएं और बाएं अधस्तन कोण पर 3 राजू बाहल्य है, विड्थ नीचे 3 राजू है, हाँ और एक प्रदेश हो जाता है, देखो आधे तक लिया तो 1.5 राजू हो जाएगा, हाँ आधे तक 1.5 राजू होगा। देखो क्या कहते हैं, दक्षिण और वाम अधस्तन कोण पर 3 राजू बाहल्य है, अन्य दक्षिण वाम कोणों पर यथाक्रम से ऊपर और नीचे 1.5 राजू बाहल्य है, आधे तक ही लिया ना उसको तो 1.5 राजू रह गया। अवशिष्ट दो कोणों पर 1 आकाश प्रदेश प्रमाण बाहल्य है, ऊपर हमने देखा तो 1 पॉइंट खाली था, और अन्यत्र अर्थात बीच में क्रम से वृद्धि को प्राप्त बाहुल्य है। इस प्रकार के इन दोनों आयत चतुरस्र क्षेत्रों को लेकर यानी उठाकर उनमें एक क्षेत्र के ऊपर दूसरे क्षेत्र को विपर्यास यानी उल्टा करके स्थापित करने पर सर्वत्र 3 राजू बाहुल्य वाला क्षेत्र हो जाता है। ये यहाँ से क्रम से नीचे से ऊपर, ये नीचे 3 राजू था वो कम हो जाता है, तो इसको और इसको एक हाँ उल्टा पुल्टा करेंगे तो सर्वत्र 3 राजू हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा, जो फिगर पहले अपने पहले पेज पर भी उन्होंने दिए, इसमें से सेकंड पेज पर यहाँ फिगर नंबर आकृति नंबर 10 वाली देखो, आकृति नंबर 8 में रेक्टेंगल के दोनों बाजू 3-3 भाग किए, 1-2-3 और यहाँ 5-6-7 बराबर, ये जो है वो 2 और 5 उल्टा पुल्टा रख दिया उन्होंने, तो दोनों का मिला हुआ प्रमाण ये इक्वल हो जाएगा, ऊपर जो टेपरिंग था वो इक्वल हो गया, हाँ वो इक्वल हो गया, यानी 2 और 5 को उन्होंने इकट्ठा करके फिर उसका, और यहाँ फिगर में आकृति नंबर 1 में 1 और 3 ये दो ट्रायंगल रह गए, और 4 और 6 है, 6 और 7 ये दो ट्रायंगल हो गए, ये ऐसा वाला पहले रेक्टेंगल हमने निकाला था, बाजू में नीचे 3 राजू और ऊपर 1 प्रदेश था, अब जो साइड का जो रह गया है 7 राजू हाइट और नीचे जो हमने देखी थी वो जो परिघी में से वो निकाल कर वो 4 हाँ, नौ पूर्णांक 48/113 और ये यथा योग्य करना। अब उसका आधा कर दिया तो यहाँ तो 3.5 हुआ। हाँ, इसका आधा करने पर अभी उसको ऐसे नीचे 3 राजू है ना, इसे मोटाई, ये नीचे उसकी विड्थ है, तो ये 3 राजू यहाँ है और ऊपर टेपरिंग यहाँ पर 1.5 राजू ही रह जाएगी। ये विड्थ यहाँ टेपरिंग होते होते ऊपर एक प्रदेश तक गई, तो यहाँ 1.5 राजू और यहाँ ऊपर मिटते मिटते कम होते होते 1.5 राजू, 3 राजू और 1.5 राजू, तो यहाँ वाला और वहाँ वाला दोनों ही लेना है। ऐसे हमने ये स्क्वायर निकाला, ये उसके अंदर की विड्थ है, थ्री डायमेंशनल इमेजिन करो इसको, नीचे 3 राजू है, ऊपर टेपरिंग 1.5 राजू रहेगी, वहाँ का भी ऐसे, उसको उल्टा इसमें फिक्स कर दो तो सब 3 राजू हो जाएगी, तो रेक्टेंगल बराबर हो जाएगी और ये 2 ट्रायंगल रहे अभी। यहाँ से आगे ऐसे प्रोसेस होगा, इसमें फिर एक रेक्टेंगल निकालेगा और 2 ट्रायंगल रहेगी, जो रिमेनिंग है उसमें एक रेक्टेंगल निकालेंगे, 2 ट्रायंगल रहेंगे, एक प्रदेश तक जाओ ऐसा कहते हैं। और फिर उसका वो घनफल कितने प्रोपोर्शन में उसको भी बता रहे, यानी उसके कितने भाग में ये घनफल वगैरह वगैरह वो तरीका बताएंगे। 4-4 गुना होता जाएगा, रिमेनिंग का 4 ये गुना, उससे 4 गुना अगला वाला, उससे 4 गुना अगला, इस तरह से। ये कहाँ, यानी उनके तरीका अपने ख्याल में आए तो आगे की बात आसान है भी। हाँ देखो, वो हमने देखा ना, उल्टा कर रखे और सर्वत्र 3 राजू बाहुल्य वाला, नीचे से 4th लाइन, इस विस्तार को उत्छेद से गुणा कर पुनः वेद यानी मोटाई से गुणा करने पर घनफल अभी जो है 4.161/226, हमने उसका आधा निकाला था ना करके, हा? फिर 3.5, क्योंकि जो हाइट है, हाइट को हमने आधा किया था, इसको आधा किया तो 3.5 रह गया था, और ये 4 पूर्णांक जो था उसको भी आधा किया था, क्योंकि ये रेक्टेंगल इसमें से निकाला था ना हमने, तो ये भी आधा हो गया पूर्व से। ये 4 पूर्णांक जो हमने कुछ निकाला था 161/226, नहीं 9 पूर्णांक 48 था, उसका आधा करके ये 4 पूर्णांक 161/226 आया, बराबर। ये 4 पूर्णांक समथिंग, ये 3.5, नीचे ऐसा 3 था और ऊपर 1.5 था, और वहाँ का भी लिए, दोनों साइड का लिए, दोनों साइड के ट्रायंगल रेक्टेंगल लिए और उसमें एक दूसरे में फिक्स कर दिए, तो 3 राजू सर्वत्र हो गए। तो 3.5 गुना 4 पूर्णांक संख्या और 3, देखो यहाँ लिखा है 4 पूर्णांक 161/226 गुना 3.5 गुना 3, तो अभी ये जो रेक्टेंगल हमने निकाला इसमें से जो कुछ क्यूब निकाला, तो उसका घनफल 49.217/452 हो जाता है। ये यहाँ तक कैसा निकाला ख्याल में आया? ये दोनों का मिलकर, दोनों बाजू का रेक्टेंगल मिलकर इतनी संख्या है। अब 1, 2 और वहाँ के 2, 4 त्रिकोण रह गए। अब अवशिष्ट जो 4 त्रिकोण क्षेत्र है, वो 4 कौन से ख्याल में है ना, वहाँ के 2 और वहाँ के, हाँ, यानी यहाँ इसमें हमने इस लेवल पर हमने ऐसा ट्रायंगल किया, अभी इसका आधा निकला, इसका आधा, हाँ, और ये जो 3 राज्य सर्वत्र, यहाँ का भी और यहाँ का भी लिया, तो उनका मिला हुआ एक क्षेत्रफल निकला, और 1, 2 त्रिकोण इधर और यहाँ 2 त्रिकोण, इस तरह से 4 त्रिकोण बाकी रह गए। तो जो 4 त्रिकोण क्षेत्र है वे 3.5 राजू उत्छेद वाले हैं, रिमेनिंग है ना अभी, ये 3.5 राजू उत्छेद वाले हैं, तथा 226 से 1 राजू को खंडित कर उनमें से 61 खंडों से अधिक 4 राजू, अर्थात 4 पूर्णांक 161/226, ये 4 पूर्णांक इसमें चले गए, ये आधा और यहाँ आधा रह गया था। ये त्रिकोण कहो, ये त्रिकोण इक्वल है, यहाँ 3.5 राजू है और यहाँ वो 4.161/226 है। हाँ, आइडेंटिकल ही हो जाए, चारों ही सेम है, चारों जो त्रिकोण है वो इक्वल है। उन्हें कर्ण क्षेत्र से लगाकर दोनों ही पार्श्व भागों में बीच से छिन्न करने पर 4 आयत चतुरस्र क्षेत्र और 8 त्रिकोण क्षेत्र हो जाते हैं। अभी हर ट्रायंगल को इस तरह से हम करेंगे तो 4 तो आयत हो गए, 4 × 8 तो ट्रायंगल रह जाएंगे, यानी उसके वो जो हाइट वगैरह जो है वो आधी आधी होती जाएगी आगे आगे, यानी दो जो बाजू है वो आधी आधी हो गई, तो क्षेत्रफल 1/4 उसका घनफल 1/4 में चला जाएगा। यहाँ पर चारों ही आयत चतुरस्र क्षेत्रों का घनफल पहले के दोनों आयत चतुरस्र क्षेत्रों के घनफल के चतुर्थ भाग मात्र होता है। ये जो पहले हमने यहाँ निकाला था, ये बड़ा दोनों बाजू का, उससे अभी यहाँ जो आयत चतुरस्र अभी आगे निकालेंगे वो 1/4 हो जाता है। क्योंकि चारों ही क्षेत्रों को बाहल्य के अविरोध से इकट्ठा करने पर अर्थात यथाक्रम से विपर्यास कर उल्टा रखने पर 3 राजो बाहल्य और पहले के क्षेत्र के विष्कम्भ और आयाम से अर्धमात्र विष्कम्भ और आयाम प्रमाण वाला क्षेत्र पाया जाता है। उल्टा पुल्टा करने के 3 राजो तो सेम रहते और इसमें आधा हो गया, ये जो था उसके आधा यहाँ हो गया, इसको 3 राजो नीचे है और ऊपर कम हो गया, अभी उसको उल्टा उसमें रख देंगे।
अच्छा, ये
नीचे वाली की बात चल रही। हाँ, तो यहाँ जो ये अभी दूसरा जो स्क्वायर निकला यहाँ वो इससे 1/4 है, ट्रायंगल की बात नहीं हो रही, वो रेक्टेंगल की बात हो रही है। हाँ, रेक्टेंगल में 3 राजो तो 3 राजो ही रहा और ये दो में आधा आधा हो गया प्रमाण, इसलिए उसका घनफल 1/4 चला गया। हाँ, भागाकार में 2×2 1/4 हो गया। शंका, इन 4 आयत चतुरस्र क्षेत्रों के मिलाने पर 3 राजो बाहल्य कैसे होता है, उसका प्रश्न यही है ना। हाँ, समाधान, क्योंकि पहले बताए हुए आयत चतुरस्र क्षेत्र के बाहल्य से इस समय के आयत चतुरस्र क्षेत्रों का बाहल्य आधा ही है और पहले के उनके उच्छेद की अपेक्षा अब के इनका उच्छेद भी आधा ही दिखाई देता है। अब शेष रहे 8 त्रिकोण क्षेत्रों को पूर्व के समान ही खंडित करने पर उनमें 16 त्रिकोण क्षेत्र और 8 आयत चतुरस्र क्षेत्र हो जाते हैं। अभी जितने जितने त्रिकोण होंगे उसमें से वापस वो आयत चतुरस्र निकालो और एक के बदले दो दो त्रिकोण हो जाएंगे, तो ऐसे आगे आगे करते जाओ ऐसा कह रहे। पहले बताए गए 4 आयत चतुरस्र क्षेत्रों का उच्छेद से विष्कम्भ से और बाहल्य से अर्ध प्रमाण निकाल कर आधा आधा होता जाता है ना, बाहल्य में से भी अभी आधा आधा हो जाएगा। 8 ही आयत चतुरस्र क्षेत्रों का घनफल अभी बताए गए 4 आयत चतुरस्र क्षेत्रों के घनफल के चतुर्थ भाग मात्र होता है। आगे जितने नंबर बढ़ते जाएंगे, पहले दो थे आयत, फिर 4 हो गए, फिर और बढ़ते गए, तो उनका 1/4 होता जाता है। आगे आगे जितने करो उसका 1/4 चला जाएगा, चतुर्थ भाग मात्र होता है। इसी प्रकार 16, 32, 64 आदि क्रम से आयत चतुरस्र क्षेत्र पहले पहले के आयत चतुरस्र क्षेत्र के घनफलों के चतुर्थ भाग मात्र घनफल वाले होते हुए तब तक चले जाएंगे जब तक कि अविभाग प्रतिच्छेद, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो, अर्थात एक परमाणु प्राप्त नहीं होता, यानी एक प्रदेश तक चले जाएंगे। तो अभी सबकी टोटल करनी पड़ेगी हमको। वो एक एक प्रदेश की हो जाएगा ना, वो तो एक प्रदेश तक गया, एक प्रदेश तक गया। एक पॉइंट आ गया लास्ट में, अभी एक पॉइंट से लेकर चले जाओ कहाँ तक, ये लास्ट में पहले जो हमने आयत का निकाला था वहाँ तक, वो तो यहाँ से शुरू किया हमने, इससे चार गुना चार गुना चार गुना चार गुना चार गुना, वो ऊपर से वन फोर्थ निकला, अभी नीचे से गिनो तो वो चार गुना है। अंतिम पॉइंट कौन सा था जो पहले हमने दो बाजू के आयत निकाले थे, वो उसका कितना था घनफल, ये 14 प्रेष पर 49 पूर्णांक वो बराबर, हाँ तो वो यहाँ लास्ट पॉइंट पर था। अभी भाई आपका सूत्र पढ़ो दोषी साहब, अभी सूत्र पढ़ो, यहाँ कुछ नहीं है, हाँ अंत गुणम धनी धनी अंत धनम गुण गुणियम आदि विहीनम ऋण उत्तर धनम, यानी क्या, ये चार चार गुणा है तो जो अंत है अंत धन गुण गुणियम अपना गुणकार चार का है, तो यहाँ पर जो संख्या है उसको चार से गुणा करो, फिर चार का गुणकार है तो चार माइनस एक तीन से डिवाइड करो और उसमें से आदि विहीन करो, आदि आदि तो एक प्रदेश है तो विहीन करने का सवाल नहीं है, एक माइनस करेंगे तो एक राजू माइनस हो जाएगा, तो इतना ही अपना उत्तर आने वाला है। अब देखेंगे वे क्या कहते हैं, ये 14 पेज पर हमने लिखा ना 49 पूर्णांक 217/452, ये आगे के मैंने अपूर्णांक नहीं लिखे है, हाँ देखो इसको अभी पढ़ेंगे हम, हाँ एक परमाणु प्राप्त नहीं थे, इस प्रकार से उत्पन्न हुए समस्त क्षेत्रों के घनफलों के जोड़ने का अभी 16 पृष्ठ पर आए विधान कहते हैं, वह इस प्रकार है, सभी क्षेत्रों का घनफल चतुर्गुणित क्रम से अवस्थित है, एक प्रदेश से लेकर चार 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 गुणा करते हैं तो चतुर्गुणित क्रम से अवस्थित है चौगुणा, इसलिए उनमें अंतिम क्षेत्रफल को चार से गुणा करना, अंतिम घनफल जो हमने 49 पूर्णांक निकाला था और चार में से एक कम अर्थात तीन से भाग देने पर घनफल 65 पूर्णांक 320/1356, ये कौन सी संख्या से हमने निकाला, ये 49 पूर्णांक 1320/1356, मैं 320 पढ़ा क्या, नहीं 1320 है, हम मान लेते हैं ना 50, हम मान लेते हैं 50 अगर होता उसकी बात चल रही, तो चार से गुणा करेंगे और तीन से भाग देंगे, यानी 5×20 200/3 318 समथिंग आ जाता, हाँ अभी यहाँ 65 पॉइंट है ना, क्योंकि हमने फिगर बदली है, यहाँ 49 पूर्णांक कुछ था, यानी अपना हाँ ये संख्या निकाल कर ये पूरे ही ऐसा विस्तार करके देखना है तो हम देख सकते हैं, तो कैसा निकाला वो ख्याल तो है, देखो तो घनफल इतना होता है, ये ख्याल आया कैसे निकाला, चार से गुणा किया, तो इन्होंने ये सूत्र की यहाँ चर्चा नहीं की क्योंकि हम पहले सिखाया ऐसे समझ के, जो कि हम धवला में तो नहीं सीखे थे, हमने तो गोमर सार में इसको पढ़ा था अंत धनम गुण गुणियम, हाँ समय ज्ञान चंद्रिका में, और अधोलोक के सभी क्षेत्रों का घनफल 106.261/1356, ये कैसा निकाला होगा, हाँ बीच का जो हमने रेक्टेंगल का निकाला था ना आयत, पहला आयत निकाला था वो एक राजू व्यास वाले की परिघि का और वो सब सात राजू वाले का, नीचे तीन राजू ऊपर एक प्रदेश, उसका इसमें मिला देना, देखो वो यहाँ पर था, वो 34 पूर्णांक 13 वे पेज पर 34 पूर्णांक 107/226 इन दो की टोटल नहीं है। 13 नंबर पृष्ठ पर देखो, यानी ये 65 पूर्णांक 1320 बाय 1356 प्लस यहाँ जो 34 पूर्णांक लिखा है, 34 पूर्णांक 107 बाय 226 इससे ये संख्या आ गई अभी उन्हें। हाँ ये दोनों का जोड़ है ये। पढ़ेंगे आप? ये नहीं आ रहा है ना। हाँ अधो लोगों से सव खेत फल समासो वो 65 और 34 तो 99 हो जाते हैं, और आगे में इसको 107 को चार गुणा करेंगे ना। नहीं 1356 कितने गुणा है? 6 गुणा है। हाँ 6 गुणा है उसको। उसका पहले सिंप्लीफिकेशन करूँ बाद? हाँ बाद में करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके बाद उसको फिर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो समझ छेद करते समय चार गुणा कर दिया हमने उसमें डिफरेंस पड़ेगा। ये समझ छेद खाली अभी डायरेक्ट हम समझ छेद करने जाते हैं अपूर्णांकों का तो वो नहीं जमेगा। हाँ सब टोटल के साथ करना पड़ेगा उसको, देखना आज करके। हाँ मेथड समझ में नहीं हमने क्यों ऐड किया इसको, इसको ही देखना है। बाजू के जो हमने देखे थे त्रिकोण त्रिकोण और उसमें आयत करते करते उस सब की टोटल हमने निकाली घनफलों की, उसमें बीच वाला जो अलग रखा था हमने उसका घनफल उसमें मिला दिया। अरे ये आयत का मिला दिया और वो इसका वो ए, नहीं, 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 नहीं नहीं वो नहीं, नहीं नहीं और एक फिगर मिलानी चाहिए वो ये नहीं नहीं वो गोल वाली।
अच्छा, वो जो पहले
निकाली। हाँ गोल को बाजू रखा था ना 371 बाय 113 इंटू 7 नहीं एक मिनट देखो वहां तो हमने उसका विषकम्ब निकाला, परिघि निकाली। परिघि कितनी 371 बाय 400 नहीं 371 बाय 113 गुणा 7 करेंगे 371 बाय 113 गुणा 7 सत्य राजू दे गुणी दे खाय फल फिमित्यम होदी 5 पूर्णांक 337 बाय 452 देखो नीचे से तीसरी लाइन दूसरी लाइन में लिखा है 12 पेज पर हाँ 12 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन ये गोल वो भूल गए थे हम अब आ गए अब वहाँ लिख के रखो ऐसा, यानी वो आयत का निकाला। देखो देखो ये सुपा का जो आकार हमने निकाला था उसकी तो टोटल हमने निकाली वहाँ, और बीच में वो खंबे जैसा हमने एक राजू वाले हमने निकाले, एक राजू चौड़ाई और 7 राजू हाइट वाली, उसका भी क्षेत्रफल इसमें मिलाना चाहिए। तो प्लस 5 पूर्णांक हाँ 337 बाय 452 35 और 34 99 हुए 99 और 5 100 और उसके इसकी हाँ इसको टोटल करना उसके वो तो हो जाते हैं। अच्छा है अपना समाधान होना चाहिए अभी आसान हो गया ना। मैंने तो कल रोटी बनाने के पहले वो पिंड बनाया उसका आटे का वो रवि के ऊपर वो एक राजू वाली रवि रखी बीच में, फिर उसको छेद करके देखा क्या क्या हो रहा है कहाँ कहाँ। मैंने वो प्लास्टिसिन मंगाया था मगर वो तो उसको हाथ लगाने का मन नहीं हुआ। ये भी किया था ना ये ऐसा, ऊपर एक राजू वाला और नीचे सात राजू वाला, ये थर्मोकॉल का ये 3.5 मैंने माप के लिया था और ये वाला ऐसा 20 यानी 3.5 का माप लिया उसको। तो इस तरह से वो ऊपर थिन और नीचे पूरा, और बीच वाला वो निकाल के रखा, एक बाजू से उसको छेद किया, छेद किया तो ये ओपन हो जाता है। अभी ये तो फट गया परंतु ये ऐसा ही रह जाता है। तो फिर उस ऊपर के क्षेत्र वो बीच वाला वो आयत निकाला और साइड के उसके अभी साइड में इस तरह से निकलेगा, वो यहाँ से निकला ना साइड से, ये 7 राजू, ये 3 और ये 3 अंदर से काट के निकाला हुआ, और ये जो हमने उच्छेद अभी देखा था 9 पूर्णांक जो कुछ आया था वो, फिर उसका एक एक स्क्वायर निकाला बीच में से ऐसा काट के, आधा आधा होगा और 2 ट्रायंगल रह जाएंगे, फिर उसका ट्रायंगल इस तरह से रेक्टेंगल। वो क्या कहना चाहते वो अपने ख्याल में नहीं आता ना पहले। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब चारों ओर से मृदंगाकार ऊर्ध्वलोक रूप क्षेत्र का घनफल निकालते हैं। नीचे तो वेत्रासन जैसा था, अभी ऊपर मृदंगाकार है, मृदंगाकार है ने मध्य लोक तक, यहाँ एक राजू, ब्रह्म स्वर्ग के पास 5 राजू और फिर ऊपर एक राजू, ये मृदंगाकार हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें एक राजू चौड़े, 7 राजू लंबे और गोल आकार वाले सूची रूप क्षेत्र का घनफल पहले अधोलोक में कहे गए विधान से निकालने पर 5 पूर्णांक 357/452 ये बीच वाला, ये जो गोल है ना इसका निकाला, बीच का गोल है वो एक राजू व्यास वाला, उसका घनफल अभी जो हमने देखा था वो निकाल के अलग रखेंगे, पृथक स्थापित कर देना चाहिए। अब लोक को मध्य लोक से काटने पर जो 2 भाग पहले हुए थे, ये यहाँ से काटा ना हमने, अधोलोक को अलग किया था, ये यहाँ से काटने पर अभी ये ऊर्ध्वलोक का भाग है, जो 2 भाग पहले हुए थे उनमें के ऊपरी अर्ध भाग को 5 राजू है विष्कम्ब, जहाँ पर ऐसे ब्रह्मलोक के अंतस्थित प्रदेश पर बीच से खंडित कर उसमें से एक खंड को पृथक स्थापन कर बचे हुए खंड को मध्य में ऊपर से नीचे तक फाड़ कर पसारने से सुपा के आकार वाला क्षेत्र हो जाता है। इसको यहाँ से काटना है और फिर इसको काट के फैलाना है। तो जैसे पहले सुपा का आकार हुआ था वैसे ही सुपा का आकार हो जाएगा। नीचे भी ऐसे करो, ये तो एग्जैक्ट डबल हो जाएगा इसके, एक का निकालेंगे तो दोनों का मिल जाने। वो तो नीचे का अधोलोक का बताया ना, ये ऊर्ध्वलोक की बात चल रही है। हाँ। वो मेथड वही है जो पहले देखी थी, वहां तो 7 राजू हाइट वाला था, अब यहाँ कितनी हाइट होगी, हाँ 3.5 वाले, क्योंकि आधा किया ना, 7 राजू में से हमने ब्रह्मलोक तक आधा किया तो 3.5 वाली हाइट है, और यहाँ कितने रहेगी, 5 राजू में से एक राजू निकालो, 4 रहे, 4 में से खाली 2 राजू आएगी एक बाजू में। अच्छा, 5 राजू व्यास की परिघी निकालनी पड़ेगी, परिघी का आधा करेंगे फिर उसमें से वो कुछ निकालेंगे वो, हाँ परिघी का, हाँ परिघी पूरी निकालेगी, हाँ पूरी परिघी हमको एक साथ निकलेगी, फिर उसमें से वो आयत वगैरह निकालेंगे अलग अलग। हाँ मेथड ख्याल में लेनी चाहिए अपने को। हाँ फिगर्स तो अभी हम देख लेंगे इसमें से. देखो सुपा के आकार वाला क्षेत्र हो जाता है नीचे से छठी लाइन में. उसके मुख का विस्तार 371/113 इतना होता है, क्योंकि यही एक राजू वाला ये हमने फैला दिया है तो ये चौड़ा हो जाएगा ना ऐसा. अब ये सुपा हो गया तो बीच का रेक्टेंगल पहले निकालेंगे. एक राजू का जो व्यास पहले जैसे हमने नीचे निकाला था उतना ही है, तो 371/113 वाला ये मुख का विस्तार. हाँ मुख का विस्तार इतना है तथा तल विस्तार 15/96/113 इतना होता है. पांच राजू के परिघि निकाले. वो कैसे निकाली थी? पांच को पहले 16 गुना करो, यहाँ निकालो 42 पृष्ठ पर 16 गुना करके उसमें 16 ऐड किए थे हमने. देखो 16 पर से 80 और 16 96/113 प्लस 5 × 15 इज इक्वल टू अभी इंटू यहाँ 113 लेना. 15 × 45 4 15 × 15 = 19 7 × 1 15 × 15 = 16 96 1791/113 वही वो पांच पूर्णांक उन्होंने निकाले है वही बात यहाँ आती है. कैसा निकालना उसका ये हमें फॉर्मूला पता है. पंद्रह पूर्णांक आते एक पहले एक का भाग गया फिर पांच का पंद्रह. हाँ पंद्रह पूर्णांक जो अभी उन्होंने निकाल के 96/113 ये कैसा निकालना इतना ही अपने को पता है मालूम होना चाहिए. तो यहाँ लिख के रखो पेज नंबर 42. हाँ देखिए अभी हमने 42 पृष्ठ निकाला आपने 42 तो उसमें सूक्ष्म परिघि निकालने का तरीका बताया. हम वो पाई से गुणा करने पाई आर स्क्वायर करते हैं तो उसके बदले ये सूक्ष्म और परिघि निकालने का तरीका. तो जितना डायमीटर है अभी यहाँ अपना पांच राजू है तो पांच राजू को 16 गुणा करने का. वहाँ है ना 42 पृष्ठ पर आप सात राजू का निकाल के दिखाए उन्होंने तो 5 × 16 हुआ. हाँ तो उसमें 16 मिलाया उसको 113 से डिवाइड किया. ये उन्होंने फॉर्मूला बना बनाया दिया है प्लस उसमें क्या मिलाया 5 × 3 तो उसकी टोटल इतनी आ जाएगी जो अभी हमने निकाली 17/91/113. दैट इज इक्वल टू 15/96/113. एक कौन सी मेथड से निकालना इतना अपने ख्याल में लेना चाहिए. अब आगे बढ़ेंगे. हाँ 17/91/113. हाँ और उसका फाइनल रिजल्ट तो यहाँ लिखा ही है. हाँ साइड में 2 राजू रहता है. हाँ वहाँ जो हमने 3 राजू देखा था कट करने पर जो साइड 3 राजू की थी वो अभी 2 राजू की रहेगी. ख्याल आता है? ये जो पहले हमने हाँ 5 राजू में से बीच की 1 राजू वाली नली हमने निकाल दी मान लेते तो साइड में 2-2 हाँ 2-2 राजू रहेंगे. ये इसी को इमेजिन करो ना ये नीचे का 5 राजू है बीच का 1 राजू निकाला तो इधर 2 राजू रहता है. इसको काटेंगे तो भी ये भीड़ 2 राजू वाली रहेगी जो पहले हमने 3 राजू वाली देखी थी. अब हम आगे बढ़ेंगे. देखो पेज 16 पर चल रहा है अपना, नीचे से पांचवी लाइन। इस सूर्प क्षेत्र के मुख में मोटा ही आकाश के एक प्रदेश प्रमाण है और तल के मुख प्रमाण मध्य भाग में दो राजू मोटाई है। जैसे हमने नीचे अधोलोक में तीन राजू देखी थी, क्यों? सात राजू में से बीच का एक राजू निकाला था और उसको आधा आधा यानी तीन राजू किए थे। वैसे यहाँ पांच राजू को हमने डिवाइड किया, उसमें से एक राजू बाद किया, चार रहे उसमें से दोनों बाजू के दो दो राजू हो जाए, तो मोटा यहाँ दो राजू है। तो तल के मुख प्रमाण मध्य भाग में दो राजू मोटाई है। पुनः क्रम से हानि को प्राप्त हुई अर्थात कम होती हुई इसी तल भाग के दोनों कोनों पर आकाश के एक प्रदेश प्रमाण मोटाई है, क्योंकि मृदंगाकार है। यहाँ दो राजू मोटाई थी, ऊपर हमने एक प्रदेश प्रमाण देखी थी, नीचे फिर घटते हुए यहाँ एक प्रदेश हो जाएगी मध्यलोक के साइड में। इस सूर्प क्षेत्र को मुख विस्तार प्रमाण विष्कम्भ से खंडित करने पर दो त्रिकोण क्षेत्र और एक आयत चतुरस्र क्षेत्र हो जाते हैं। अभी सेम मेथड जैसे हमने पहले तो दिमाग लगाया था बहुत, अभी तो ये आसान हो गया। हाँ, उनमें से पहले आयत चतुरस्र क्षेत्र का जो 3.5 राजू लंबा है, 3 राजू से कुछ अधिक अर्थात 3.32/113 राजू चौड़ा है और तल में दो राजू और मुख में एक आकाश प्रदेश प्रमाण मोटा है, ऐसे उस आयत चतुरस्र क्षेत्र का घनफल निकालते हैं। वही इस प्रकार है, जैसे हमने पहले वाले सेंटर वाला निकाला था वैसे ही यहाँ हाइट कितनी है 3.5। हाँ, और ये 3.32/113 वो किसका लिया था? 371/113 ये एक राजू को जो फैलाया था हमने परिघी, उसी की बात है ये। और तल में दो राजू और ऊपर एक प्रदेश, तो एवरेज कितना होगा? एक राजू। किसको समझा रहे हैं? देखो अभी ये नया सोपा निकाला ना हमने, किधर गया हमारा सोपा? बीच का जो हमने देखा था सेंटर का आयत, सेंटर का आयत, अभी ये हम ये अधोलोक को भूल जाओ, अभी ये हमने ऊपर का देख रहे हैं समझो। ये ब्रह्मलोक के पास हमने पांच राजू किया था, ये पांच राजू वाला ये परिघी है नीचे की तल की, उसमें से बीच वाला एक राजू निकाल दिया, अब जो रिमेनिंग है उसको फैलाया। तो एक राजू वाली ये जो परिघी है 3.32/113 ये है, अभी उसी विड्थ का हम रेक्टेंगल निकालेंगे। तो अभी हाइट कितनी है ब्रह्म तक? 3.5 है ना, तो 3.5 हाइट हुई, विड्थ 3.32/113। नीचे दो राजू है, अभी हमने देखा था पांच राजू में से एक राजू बीच में काट दिया था और रिमेनिंग को हमने कट करके ओपन किया, तो नीचे की विड्थ जो है वो दो राजू और ऊपर एक प्रदेश, तो एवरेज एक राजू हो जाएगा, है ना? हाँ, तो एक राजू से गुणा करना, 3.5 × 3.32/113 × 1, तो इसका देखो उसका घनफल निकालते हुए इस प्रकार है। विष्कम्भ 371/113 से उच्छेद यानी हाइट 3.5 को गुणाकार, पुनः उसे मोटाई के प्रमाण एक राजू से गुणा करने पर, गुणाकार नहीं गुणा कर पाइए ना, कि गुणा कर करके, हाँ गुणे ऊण विखम्बेणु से गुणे ऊण वेण अगर राजू ने गुणी दे, गुणा करके या गुणा अभी समझ लेना उसको, या गुणा कर ऐसा भी कहते हम। हाँ, तो मध्यम अर्थात आयत चतुरस्र क्षेत्र का घनफल आ जाता है, यानी वो सेंटर वाला मिला होंगे हमको, ये सेंटर वाला, दो बाजू दो त्रिकोण रहेंगे, दो त्रिकोण में हाइट यहाँ 3.5 रहेगी। अब ये जो हमने पूरा ही निकाला था, परिघ निकाला था ना 15 पूर्णांक कुछ, उसमें से बीच वाला माइनस करेंगे और रिमेनिंग के दो भाग करेंगे, तो वो बताएंगे अभी कितना निकलते हैं। उसका प्रमाण 371/113 × 3.5 × 1.1 इज इक्वल टू 11/111/226। ये बीच वाला आयत वाला इन्होंने घनफल निकाला। पहले हमने वो बीच वाले एक राजू वाले नली का तो रखा था, ये दूसरा फिगर हुआ। अभी यहाँ जो साइड में जो ट्रायंगल्स है उसमें से रेक्टेंगल करते 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 वो एक प्रदेश तक चले जाएंगे और फिर सबकी टोटल करेंगे और वो इसमें मिला देंगे, तो 4 × 4 × वो हिसाब वहाँ भी लगाएंगे। तो वहाँ देखते हैं, अभी शेष जो दो त्रिकोण क्षेत्र है जो कि 3.5 राजू ऊँचे तथा एक राजू को 113 से खंडित कर उनमें 32 खंड से अधिक 6 राजू अर्थात 6 × 32/113 राजू चौड़े हैं। ये कैसा निकाला मालूम है? देखो, ये 15 पूर्णांक वो देखा था, 15 × 96/113, उसमें से वो एक राजू की परिघ ही माइनस करो। देखो, हम हमारे पास तो अभी है ना 1791/113, वही वो 15 वाला रूप है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1791/113 माइनस वो ऊपर वाला, ये जो आयत हमने निकाला बीच में 371/113 कितनी आई संख्या इसकी, 0729/1420/113। इसको अभी आधा करना पड़ेगा, यानी 710 हो है ना ऊपर, 710/113, 6 का भाग गया, 710 में से साहित्रिक 18 हचाला एक सहाय के सानिक 7 6 हाँ 8 2 हचाला एक 8 3 11 32/113 आया ना। हाँ, एक फिगर कहाँ से आई इतना अपने को ख्याल लेना है। तो ये हाँ, अभी हमने ये 15 पूर्णांक को निकाला था 96 वगैरह, उसका ये फुल फॉर्म था 1791/113। उसमें से बीच वाला जो रेक्टेंगल की जो साइड थी, ये सेंटर वाले, उसको हमने माइनस किया। हाँ, तो माइनस किया तो किसको माइनस किया, 371/113 को माइनस किया। हाँ, 1420/113 आ गए। अभी उसको आधा किया, दोनों साइड का है ना ट्रायंगल, तो 6 × 32/113 है। ये कैसे निकला ये ख्याल में लेना है। तो यह भी एक साइड का ट्रायंगल का हमको भुजा मिल गई, हाइट उसकी है 3.5, उसकी भुजा कितनी है, ये 3.5 है, ये अभी हमें निकाला 6.32/113 बराबर। (7/10/113) उसका ये पूर्णांक, नहीं वो मैंने इसको 6 गुना इसमें से माइनस किया, यानी 113/678, तो 32 बाकी रह जाते ना, ये इसी का सिंप्लीफाई है। वो तो डायरेक्ट कैसा निकलू मैं, ये नहीं हो पीछे आंकड़े मोड़ तर करायला पाहिजे ना मला, ख्याल है ना। हाइट अभी इसकी 3.5, नीचे की जो भुजा कहते हैं 6.32 पे 113 इतनी आई, और नीचे की विड्थ 2 राजू है, ऊपर 1 प्रदेश है। अभी इसके इसमें से एक रेक्टेंगल निकालेंगे, इसके आधा हो जाएगा, 3.5 का आधा यहाँ होगा, और यहाँ जो 6 लिया था उसका भी आधा होगा, ये 2 भुजाएं होगी, नीचे 2 राजू, यहाँ का और यहाँ का दोनों का हम मेल करेंगे तो 2 राजू सर्वत्र रहेगी, यानी इसका हमको मिलेगा घनफल, आगे आगे वाले उसके 1/4, 1/4, 1/4 एक परमाणु तक, यानी इसको चौगुणा करेंगे हम और 3 से भाग देंगे तो हमको टोटल घनफल मिल जाएगा। अब पढ़ेंगे, चौड़े हैं अभी, यहाँ 6 लिखा था ना, वहाँ के आगे पढ़ेंगे। उन्हें पहले के समान ही मध्य में से खंडित कर उनमें उत्पन्न हुए 4 त्रिकोण क्षेत्रों को दूर रखकर दोनों आयत चतुरस्र क्षेत्रों को, दोनों यानी दोनों बाजू के, यहाँ वाला और यहाँ वाला, दाएं बाएं, जो कि 2.25 राजू ऊंचाई वाले, 3.5 का आधा 2.5, 2.25 क्यों किया इतना ही समझना है हमको, ये 3.5 था उसका आधा हुआ 2.25, अब ये जो 6.32 पूर्णांक उसका भी आधा करेंगे, 2.25 राजू ऊंचाई वाले तथा 113 से 1 राजू को खंडित करके उनमें 16 खंडों से अधिक 3 राजू, यानी 3.16/113, 6.32/113 थे उसका आधा किया तो 3.16/113 आए राजू चौड़ा, तथा क्रमशः 2.10 और 1 राजू मोटे हैं, उनके घनफल को निकालते हैं। 2 राजू मोटे हैं, हाँ, तो उसमें तो यहाँ का ऐड किया तो 2 राजू हो गए, और ऊपर 1 प्रदेश वाले हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसी का विशेषार्थ फिर बता रहे हैं। यहाँ पर जो आयत चतुरस्र क्षेत्र की मोटाई क्रमशः 2.10 और 1 राजू प्रमाण कही है, उसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मलोक के पास वाले भीतरी भाग की मोटाई 2 राजू है, उसी के बाहरी भाग की मोटाई 1 राजू है, कर्ण रेखा वाले क्षेत्र की मोटाई 0 या 1 प्रदेश है, 0 कहते हैं या 1 प्रदेश ही कहते हैं, और कोटि रेखा के भाग वाले ऊपरी क्षेत्र की मोटाई 1 राजू है। वह इस प्रकार एक आयत चतुरस्र क्षेत्र के ऊपर दूसरे आयत चतुरस्र क्षेत्र को उल्टा करके रखने पर 2 राजू की मोटाई वाला 1 क्षेत्र हो जाता है। दाएं बाएं दोनों आयतकों के हमने एक के ऊपर एक रखा तो उसके इक्वल होता है ना 2 राजू की। पुनः विषकम्ब और उच्छेद का संवर्ग अर्थात परस्पर गुणन करके वेद से गुणा करने पर, देखो घनफल निकालना है तो 3 बाजू का गुणाकार करते, तो हाइट विड्थ विषकम्ब यानी विड्थ, उच्छेद यानी हाइट, और अभी वेद कहा यानी जो डेप्थ उसकी है, उक्त क्षेत्र का घनफल होता है जिसका प्रमाण, अभी 3.5 का आधा ये 7/4 हुआ, 7/2 का आधा 7/4, 2.25 का ना, फिर 355/113 ये कौन सा आया, 3 अभी हमने देखा ना 16/113, 3.16/113 और 2 राजू, तो हमें दोनों को मिलाए हुए वो आयत का उसका घनफल मिल जाएगा, इतना होता है। पुनः जो शेष 4 त्रिकोण क्षेत्र है उनका घनफल इस आयत चतुरस्र क्षेत्र के चतुर्थ भाग मात्र होता है, ये तो पहले उन्होंने दिखाया था। इसका कारण सुगम है क्योंकि अधोलोक की प्ररूपणा में कहे आए हैं, चूंकि इस प्रकार सर्व त्रिकोण क्षेत्रों के घनफल अनंतर अतिक्रांत अर्थात अभी पहले बताए क्षेत्रों के घनफल से चतुर्थ भाग के क्रम से अवस्थित है, इसलिए उनके घनफल यहाँ अर्थात 10.225/226 में मिलाने पर 14.448/678 इतना प्रमाण हो जाता है। ऊर्ध्वलोक का समस्त घनफल 58 पूर्णांक इतना होता है। अभी उसी को यहाँ नीचे भी समझाया है। ये तो हमने आधे का ऊपर का देखा, उसमें उतना ही नीचे का भी होगा, है ना?
दो टाइम।
ऊर्ध्वलोक का यह घनफल इस प्रकार आता है। पहले जो प्रमाण बतलाया गया है वह प्रमाण ऊर्ध्वलोक के विभक्त किए गए दो भागों में से एक भाग का है। हमने ब्रह्मलोक के पास विभक्त किया था तो दो भागों में से एक भाग का है, इसलिए दोनों खंडों का घनफल लाने के लिए आयत चतुरस्र क्षेत्र के घनफल को दूना किया, तब 11.111/226 × 2 22.222/226 हुआ। तथा त्रिकोण क्षेत्रों का भी घनफल दूना किया, वो अलग अलग दूना करके फिर मिला रहे, तब 14.448/678 × 2 29.218/678 हुआ। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक की सूची यानी बीच वाली, वो एक राजू वाली, आयत चतुरस्र और त्रिकोण क्षेत्रों का समस्त घनफल जोड़ने पर ये 5.337/452 वो सूची का घनफल था, उसमें 22.222/226 और 29.218/678 सबकी टोटल करेंगे तो 58.67/1326 होता है। ये पूरे ही ऊर्ध्वलोक का उन्होंने निकाला। एक मिनट, 1356 होना चाहिए था वहाँ। ऊपर की चौथी लाइन में भी देखना 58.67/1356 है, 56 ही चाहिए। करेक्शन कहाँ करना है? विशेषार्थ की अंतिम लाइन में अंतिम जो फिगर है 1326 लिखा है, वो 1356 चाहिए। अभी हमने ऊर्ध्वलोक का निकाला और पहले अर्धोलोक का निकाला था। हाँ, अभी ऊर्ध्वलोक और अधोलोक का घनफल जोड़ देने पर पहले जो हमने 106.261/1356 प्लस यहाँ पर 58.67/1356 दोनों का जोड़ 164.328/1356 आता है, इतना प्रमाण होता है। और हमने पूरे लोक का घनफल कितना देखा है? 343, और ये उसका संख्यात्मक भाग आता है। इसलिए शंकाकार की जो मान्यता है गोल वाला मृदुंग है वो खोटा है, ये सिद्ध करने के लिए पूरा ही समझाया। हाँ, ये घन की ही बात है, घनफल ही निकाला है हमने, इतने घन राजू है, इतना प्रमाण होता है। देखो, इसलिए अन्य प्रकार से माना हुआ लोक, यह अन्य प्रकार से माना हुआ लोक यानी गोलाकार मृदुंग घनलोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण सिद्ध हुआ। घनलोक यानी सात का घन, सात राजू का घन, वो घनलोक, उससे ये संख्यात्व भाग है। और इस लोक के अतिरिक्त सात राजू के घन प्रमाण लोक संज्ञक अन्य कोई क्षेत्र है नहीं। ऐसा भी नहीं कि मृदुंगाकार लोक अलग होगा और वो घनलोक कोई अलग होगा, ऐसी भी बात नहीं है, लोक तो एक ही है। जिससे कि प्रमाण लोक छह द्रव्यों के समुदाय रूप लोक से भिन्न माना जावे, और न लोकाकाश तथा अलोकाश ही स्थित सात राजू के घनमात्र आकाश प्रदेशों के प्रमाण की घनलोक संज्ञा है, क्योंकि ऐसा मानने पर लोक संज्ञा के यादृच्छिकपने का प्रसंग प्राप्त होता है। यादृच्छिक ने जैसे अपने को चाहे वैसा कुछ यादृच्छिक मनमाना, अपने मन से चाहे जैसे वैसा। यादृच्छिक ने अपने मन से चाहे जैसा अर्थ लगाओ वो शंका। यदि लोक संज्ञा को यादृच्छिक पने का प्रसंग प्राप्त होता है तो हो आओ, उसको कुछ बिगड़ता नहीं है। समाधान नहीं, क्योंकि संपूर्ण आकाश, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और घन लोक सभी संज्ञाओं को भी यादृच्छिक पने का प्रसंग आ जाएगा। एक में आप ऐसे मनमानी करो तो सब में ऐसे हो जाएगी। दूसरी बात यह है, प्रतर समुद्घातगत केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं आपको मालूम है? कितने क्षेत्र में रहते हैं? पूरे लोक में रहते हैं क्या प्रेरणा बेन? प्रतर समुद्घात में कितने तक फैलते हैं? पूरा लोक में फैलते हैं कि कुछ कम फैलते हैं? हाँ हाँ हाँ, वात वलय को छोड़कर, चहुं और सभी ओर से वात वलय को छोड़कर वहां तक फैलते हैं। तो यहाँ रीजनिंग क्या दे रहे हैं? दूसरी बात ऐसा है कि प्रतर समुद्घातगत केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं तो लोक के असंख्यातवे भाग से न्यून सर्वलोक में रहते हैं। वो तो वात वलय का जो भाग है वो असंख्यात भाग है, उससे कम कर दो लोक में से, हाँ उतने क्षेत्र में। लोक के असंख्यातवे भाग से न्यून सर्वलोक का प्रमाण, ऊर्ध्वलोक के कुछ कम तीसरे भाग से अधिक दो ऊर्ध्वलोक प्रमाण है। ये आगे आने वाली बात है, वो सूत्र बता दिए है यहाँ। ऊर्ध्वलोक को दो गुणा करो, उसमें से कुछ कम कर दो, तीसरे भाग से अधिक दो ऊर्ध्वलोक प्रमाण है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा इस साधिक दुगुणता का कथन अन्यथा बन नहीं सकता था। देखो, उन्होंने समुद्घातगत केवली की दो क्षेत्र जो बताया लोक में से कुछ कम, उसको उसको बताने के लिए प्रमाण क्या कहा कि असंख्यातवा भाग कम कर दो, 343 घन राजों में से उसका असंख्यातवा भाग कम कर दो, ये एक कथन हुआ उसी को समझाने के लिए। ये दूसरा कथन बता रहे, आप कुछ कहना चाहते हैं?
यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो 343 घन राज्य एक मान्यता है वो किस तरह से सही है, और अभी हमने जो गोलाकार देखा था मृदुंगाकार वो कैसे गलत साबित कर सकते हैं, इसके लिए वो यहाँ दलील दे रहे हैं। अभी दूसरा नंबर की दलील अभी आपने समझा नहीं?
हाँ,
दूसरे नंबर ये जो पहला आपने बताया कि असंख्यात विभाग को न्यून करना है, लेकिन दूसरी बात जो भाई बताएंगे तो उस पर से अपने को पता लगेगा। आगे बढ़िए।
ये अभी ऊर्ध्व लोक का समस्त घनफल 58 निकाला था ना, 58 पूर्णांक, तो उसमें क्या कहते हैं? देखो, कुछ कम तीसरे भाग से अधिक दो ऊर्ध्व लोक प्रमाण है। 58 का तीसरा भाग कुछ कम को छोड़ देंगे प्लस दो ऊर्ध्व लोक, 58 गुना दो, हाँ 116 प्लस 58 का तीसरा भाग उसमें मिला दो, हाँ तीसरा भाग कितना होता है उसका? 19 57, हाँ तो ऐसा कुछ उन्होंने निकाल के बताया। तो ये हो नहीं सकता, ऐसा उनका कथन है। नहीं समझे आप? देखो, अभी जो शंकाकार के जो मृदुंगाकार कल्पना थी उसके अकॉर्डिंगली जर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? वो 100, अभी हमने देखा था ना 58 116 116 प्लस वो 19 20 कुछ ही मानते हैं, 136 ही होगा प्रतर के समुद्घात केवली का घनफल, इतना ही होगा। परंतु हमें तो 343 में से कुछ कम लेना है, तो वो उसका टैली नहीं होता है। यदि हम अपने रेगुलर वो ऊर्ध्वलोक का प्रमाण निकालें नहीं, 7 राजू डेप्थ वाला, उसका घनफल उसके साथ टैली हो जाएगा। हाँ, अन्यथा नहीं। इस प्रकार ऊर्ध्व लोक की अपेक्षा इस साधिक दुगुणता का कथन अन्यथा बन नहीं सकता। अतएव प्रमाण लोक और द्रव्य लोक इन दोनों लोकों का एकत्व सिद्ध हुआ।
देखिए यहाँ पर वीरसेन आचार्य हर हमेश जितने भी पॉसिबल मतलब कथन है उन्हें ज्ञात है वो सबको बताते हैं, और जहाँ निर्णय नहीं करते हैं तो क्योंकि दोनों ही आगम के माध्यम से आया हुआ है और हमें दोनों को मानना है ऐसा एडवाइस भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऊर्ध्व लोक आपने ये जो लोकाकाश की जो कोई क्षेत्रफल है मतलब घनफल है उसका, तो उसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है इसका निर्णय बता रहे। 343 घन राज्यों ही बराबर है ऐसा इनका स्वयं का मानना है, इसलिए उन्होंने इतनी सारी मेहनत करा के अपने से अपने को सिद्ध कराया कि ये बात सही नहीं हो सकती है। यहाँ उन्होंने निर्णय दिया है वो। हाँ
विशेषार्थ यहाँ पर प्रतर समुद्घातगत केवली के क्षेत्र का प्रमाण जो ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा दो ऊर्ध्वलोक और उसी के कुछ कम तीसरे भाग से अधिक बताया है, उसका अभिप्राय यह है कि ऊर्ध्वलोक का प्रमाण 147 घन राजु है जो एक्चुअली वो 7 राजु वह साढ़े ऐसा होगा ना अभी ये 7 राजु वह 7 राजु ये 7 राजु ये 7 राजु और इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, 5 राजु का एवरेज निकालेंगे तो वो 147 आता है। ये एक्चुअल ऊर्ध्वलोक का घन उसका घनफल है तो इसको दुगुना करेंगे तो 294 घन राजु होते और उसमें वो 147 का 1/3 मिलाना है कुछ कम। हाँ इसमें 147 का त्रिभाग 49 घन राजु के जोड़ देने पर 343 घन राजु होते हैं जो कि घनलोक का प्रमाण है। यानी इस मेथड से अगर हम निकालते हैं तो ये टैली होता है, जो कि मृदुंगाकार वगैरह वो गोल आकार वाले के साथ टैली नहीं होता था। प्रतर समुद्घातगत केवली लोकांत में स्थित वात वलयों से रुद्ध क्षेत्र को छोड़कर शेष संपूर्ण क्षेत्र को व्याप्त कर लेते हैं, इसलिए 343 घन राजु में से वात वलयों से रुद्ध क्षेत्र को कम कर देना चाहिए। यही यहाँ पर देशोन क्षेत्र का अभिप्राय, देशोन यानी कुछ कम, देश से उन थोड़ा कम, इसलिए उक्त प्रमाण प्रकार से प्रमाण लोक और द्रव्य लोक के एक सिद्ध हो जाने पर, यानी जो अभी हमने लोक की बात की थी और एक्चुअली जो उसका घनफल है वो एक जैसा ही आता है ना। प्रमाण यानी जो हमने मान देखे थे 8 प्रकार के मान, पल्य सागर सुचंगुल प्रतरांगुल घन यानी घनांगुल जगत श्रेणी जगत प्रतर और लोक, वहाँ जो मान यानी प्रमाण का देखा था और एक्चुअल जो लोक है वो एक ही है। ये बात द्रव्य लोक यानी एक्चुअल लोक, प्रमाण लोक यानी वो संख्या वाला जो हम हमेशा मापने के लिए यूज करते, वो हम कहते ना इतने लोक है, असंख्यात लोक है या एक लोक है, तो वो माप और एक्चुअल लोक एक ही बात है। ये बात यहाँ समझना चाहते हैं प्रमाण लोक और द्रव्य लोक। एक सिद्ध हो जाने पर प्रमाण लोक 6 द्रव्यों के समुदाय वाले लोक से आकाश के प्रदेश गणना की अपेक्षा समान है, ऐसा अर्थ स्वीकार करना चाहिए। प्रमाण लोक में जितने उसमें आकाश के प्रदेश है उसकी संख्या को हम ले लेते हैं। शंका, पिंड रूप से एकत्रित करने पर अर्थात घन रूप किया गया यह लोक 7 राजु के घन प्रमाण कैसे हो जाते हैं? ये जो अलग अलग आकार वाला लोक है उसको पिंड रूप कर दिया, जैसे मान लो हमने मिट्टी का ऐसा गोला बनाकर ऐसा आकार किया और फिर सभी ओर से उसको ऐसा ऐसा कर दिया इक्वल, तो 7 राजु का एग्जैक्ट ऐसा चौरस जिसको कहते हैं क्यूब, तो शंकाकार का पूछना है ये कैसे हो सकता है? उक्त शंका का उत्तर कहते हैं, जो सर्व आकाश के मध्य भाग में स्थित है 14 राजु आयाम वाला है, दोनों दिशाओं के अर्थात पूर्व और पश्चिम दिशा के मूल अर्धभाग त्रिचतुर्भाग और चरम भाग में यथाक्रम से 7, 1, 5 और 1 राजु विस्तार वाला है। पूर्व पश्चिम जो हम लोकाकाश की जो हमें मालूम है ना फिगर, पूर्व पश्चिम 7 राजू, बीच में 1 राजू, फिर 5 राजू और फिर 1 राजू, विस्तार वाला है। तथा सर्वत्र 7 राजू मोटा है, ये दक्षिणोत्तर जो है वो सर्वत्र इक्वल है, 7 राजू मोटा है। वृद्धि और हानि के द्वारा जिसके दोनों प्रांत भाग स्थित है, 14 राजू लंबी, 1 राजू के वर्ग प्रमाण मुख वाली लोक नाली जिसके गर्भ में है, ये सेंटर में है, आगे से दिखाते हैं परंतु ये है बीचों बीच, 1 राजू बाय 1 राजू वाली, वो भी गोल नहीं ऐसी चौकोर हो जाएगी, और ऊपर से नीचे तक सेंटर में, ऊपर से देखेंगे तो सेंटर में दिखेगी, ऊपर जो 1 राजू बाय 7 राजू वाला जो विस्तार है उसके सेंटर बीचों बीच में वो ऊपर से नीचे तक ये त्रस नाली है, लोक नाली भी कहा। ऐसा यह पिंड रूप किया गया लोक 7 राजू के घन प्रमाण अर्थात 7 × 7 × 7 343 राजू है। वो कल हमने निकाल के भी देखा था, ये 14 है, 14 गुना ये 7 और गुना ये 4 जगह जो है उसका विस्तार, उसका एवरेज निकालना, 7 + 1 + 5 + 1 कितने हुए 14, 14 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 जगह के हमने निकाले थे, एवरेज निकालना है, तो 14 × 7 × 14/4 तो 7 × 7 × 7 हो जाएगा। देखो हाइट उसकी 14 है, विड्थ सर्वत्र दक्षिणोत्तर वो 7 राज्यों है। अब रही और दूसरी जो उसका पूर्व पश्चिम विस्तार, नीचे 7 है, 4 जगह का बताया, 7, 1, 5 और 1 उसकी टोटल होती है 14 और उसका एवरेज होगा डिवाइडेड बाय 4, तो 14 × 7 × 14 ¾ सबका गुणाकार करना, हाँ तो 7 × 7 × 7 हो जाता है, यानी 343 घन राज्यों। विशेष अर्थ, लोक का पूर्वोक्त विस्तार इस प्रकार है, लोक सर्व आकाश के मध्य में स्थित है, उसका आयाम 14 राजू है, पूर्व पश्चिम तलभाग 7 राजू, लोक के आधे अर्थात 7 राजू ऊपर जाकर मध्य लोक में 1 राजू, लोक के पौन भाग अर्थात 10.5 राजू ऊपर जाकर ब्रह्म लोक में 5-5 राजू और पूरे 14 राजू ऊपर जाकर लोक के अंतिम भाग में 1 राजू विस्तार है। लोक का उत्तर दक्षिण विस्तार सर्वत्र 7 राजू है। इस प्रकार के लोक के बीच 1 राजू चौड़ी चतुष्कोण, चतुष्कोण लिखा ना, गोल नहीं है चतुष्कोण, और 14 राजू ऊंची त्रस नाड़ी है। घन राज त्रसनाली, हाँ और बाकी सभी पूरे एकेंद्रियों का ठिकाना है रहने का राज्य। पूर्व पश्चिम भाग में लोक गड़बड़ विस्तार वाला है, इस प्रकार लोक 7 राज्यों के घन प्रमाण होता है। यदि इस प्रकार का लोक ग्रहण नहीं किया जाएगा तो प्रतर समुद्घातगत केवली के क्षेत्र के साधनार्थ कही गई 2 गाथाएं निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि उन गाथाओं में कहा गया घनफल लोक के अन्य प्रकार से मानने पर संभव नहीं। अन्य प्रकार यानी वो गोलाकार मृदुंग मानने पर ये घनफल उसमें ये फिट नहीं होता, वो तो टैली नहीं होता ना उसके साथ। इस तरह से ये शंकाकार की शंका जो उन्होंने थी मृदुंगाकार वाले की, उसको रूल आउट कर दिया। बाकी हम कल से देखेंगे आगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देतो।